نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما. آپ لوگوں کی تعداد دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اول وقت میں فجر پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اس وقت بھی جاگے ہوتے ہیں. تو اگر انسان اپنی نیند پہ قابو نہیں پا سکتا نا، تو پھر اور کس چیز پہ قابو پا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو انسان کا اپنا وجود اپنے کنٹرول میں ہونا چاہیے نا. اگر اپنا وجود ہی اپنے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر کسی اور کی تو کیا بات کرنی، دنیا کو تو کیا بدلنا. ہمیں تو سب سے پہلے خود کو بدلنا ہے نا. تو اگر ہم اول وقت میں فجر نہیں پڑھتے تو یہ دیکھیں، یہ وقت وہ ہوتا ہے جس میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو اس نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے. یہودیوں نے کہا ہوا ہے نا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد مسجد میں اتنی ہو جائے گی فجر کے وقت میں جتنی جمعے کے دن ہوا کرتی ہے، تو اس دن یہودی ختم ہو جائیں گے دنیا سے. تو ابھی تو لگتا ہے کہ وہ وقت بہت دور ہے. اگر گھروں میں بھی لوگ جاگے نہیں ہوئے تو مسجد میں کیا جائیں گے؟ سبحان اللہ. اینی ہاؤ، اپنے لیسن کی طرف ہم چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1429 ہجری بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے. یہ آخری مہینہ ہے اس کا. میں آپ کو 10 ہجری میں لے کے جانا چاہتی ہوں. آج واپس ذرا امیجن کریں، 10 ہجری میں اس وقت مکہ میں کیا ہو رہا تھا. حج کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں حج کیا، زندگی کا آخری حج، پہلا اور آخری. اس کے کچھ عرصے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. کہ دیکھیں، اس کے بعد محرم، صفر اور ربیع الاول میں آپ کی وفات ہو گئی تھی، 11 ہجری میں، یعنی تقریباً 2-3 مہینے بعد ہی. تو یہ وہ وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری آخری اپنی زندگی کی باتیں تھیں نا، وہ لوگوں کو بتائیں. جیسے کوئی انسان جانے والا ہوتا ہے، اور آپ کے الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا تھا کہ اب آپ کا بس واپسی کا وقت ہے. تو جب کوئی جانے لگتا ہے، ہم سے رخصت ہونے لگتا ہے نا، تو وہ باتیں کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں. ہم اس سال حج پہ تو نہیں جا سکے، مگر ہم یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے جاتے جاتے، اگر ہم اس دن حج میں ہوتے، عرفات میں ہوتے، تو ہمیں وہ کیا نصیحتیں کرتے. کیونکہ آپ نے پھر فرما دیا تھا نا کہ اس کو، ان باتوں کو آگے پہنچا دینا. یہ وقت بھی بڑا پیارا ہوتا ہے. اس ٹائم پہ بالکل خاموشی ہے اور آپ پوری طرح کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں، الحمدللہ. بعد میں بھی آپ یہی لیکچر سن سکتے ہیں، مگر وہ مزہ جو اس وقت سننے کا نا، یقین کریں بعد میں نہیں آ سکتا. تو میں آپ کو لے جانا چاہتی ہوں، ذرا چلیں 10 ہجری میں واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ وقت جب 1,24,000 مسلمانوں کا ایک سمندر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھا، اور آپ ان کے درمیان ایک خطبہ دے رہے ہیں. اور سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی تھی اس میں؟ کہ لوگو، میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی مل سکوں. تو آپ نے یہ فرما دیا تھا اس وقت ہی کہ اس سال کے بعد میں शायद तुम्हें कभी भी इस मकाम पे ना मिल सकूं। अब हम देखते हैं कि आपने हमें क्या बातें की। आज जो उन्होंने उस वक्त हिदायत दी थी ना, उन्हें दोहराने की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। वही बातें आज ख़त्म हो चुकी हैं जो हमारे प्यारे नबी, जिनसे हम मोहब्बतों का दावा करते हैं, जो जाते जाते हमें कह गए ना, वो हम भूल चुके हैं। और कोई जाने वाला हो, किसी के जिनके पेरेंट्स दुनिया से जा चुके हैं, तो वो हमेशा, मैंने देखा उन लोगों को बात करते हुए कि हाँ, अम्मी ने ये आखिरी बात कही थी, अब्बू ने ये कहा था। कितनी वो बातें याद रहती ना, वो इंसान के दिल पे नक्श हो जाती हैं कि उनके आखिरी अल्फाज ये थे, वो आखिरी बात ये कह रहे थे, उसको वो पल्ले बांध लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस वक्त, देखिए मीडिया का तो दौर नहीं था कि वो कोई आखिरी वक्त अपने, जब बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पे थे, तो उस वक्त कोई बात करते। इस वक्त सारी जगह से मुसलमान जमा हुए हुए थे, दूर दराज इलाकों से भी आए हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त वो आखिरी आखिरी हिदायत देना चाहते थे कि लोग सुन लें, इसके बाद मैं इनको शायद कभी भी नसीहत ना कर सकूं। तो वो फिर इंसान उस वक्त जो मेन बातें होती हैं, जिन पे वो बहुत ज़्यादा जोर देना चाहता है, ताकीद करना चाहता है, वो कहता है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बातें ऐसी ही थी। तो हम आज उस खुतबे को दोहराते हैं। इस खुतबे के ऊपर इतनी किताबें लिखी गई, इस एक खुतबे पे, कि पूरी पूरी किताबें इस एक खुतबे पे हैं। वक्त इतना नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करें, मगर जितना भी इंशाल्लाह ताला हम इसको देख सके, कम से कम एक दफ़ा हमारे जहनों से गुजर जाए कि इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पे और आखिरी वक्त में समझ लें कि हमें क्या नसीहतें करके गए, किन चीज़ों का उनको ये ख्याल था कि वो हमें जाते जाते भी बता के गए। सबसे पहली बात की तरफ आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा शुरू होता है। आपने फरमाया, लोगो, तुम्हारे खून और तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जत तुम पर हराम है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज यौमुल अरफा के दिन, जिल हज के इस मुबारक महीने में, अपने इस शहरे मक्का में तुम नाहक किसी का खून करना, किसी का माल लेना हराम जानते हो। यानी क्या फरमाया कि तुम्हारा माल, तुम्हारा खून, तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे के लिए हराम है। जैसे कि तुम अरफात के दिन को समझते हो ना, कि अरफात के दिन आप समझते हैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई किसी का माल गसब नहीं करना, या जिलहज के महीने में आप कहते हैं कि कोई फसाद नहीं, कोई दूसरे को तंग करना नहीं, कोई लूट मार नहीं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था ना कि वो लूट मार भी छोड़ देते थे, जाहिलियत के दौर में भी। ये ऐसे मुबारक महीने थे। इसी तरह मक्का का शहर हरम है ना, तो हरम की हदूद में इंसान दाखिल हो जाता है, तो फिर तो किसी चरिंद परिंद को भी नुकसान नहीं देता। तो इन चीज़ों के तो तुम बहुत लिहाज करते हो, इनका तो तुम बहुत ख्याल करते हो। मक्का को आप कितना बाइज्जत समझते हैं ना, तो इससे भी ज्यादा इज्जत किसकी है? मुसलमान के खून की, मुसलमान के माल की और मुसलमान की इज्जत की। इन तीन चीजों की इज्जत काबे से भी ज्यादा है। यानी एक हदीस में आता है कि आपने फरमाया, खून मुस्लिम अल्लाह के काबे से भी ज्यादा अफजल है। खाना काबा को आप कितना अफजल समझते हैं ना, खून मुस्लिम इससे भी ज्यादा अफसल है। मुसलमान का जो खून है, एक मुसलमान का खून बहाना भी, बल्कि क्या कहा गया कुराने पाक में, कि एक इंसान का भी ना हक खून बहाना, पूरी इंसानियत का खून बहाना है। और ये गुनाहे कबीरा में आता है। मुसलमान तो एक जिस्म की मानिंद है, एक जैसे एक बॉडी होती है, एक जिस्म होता है, जिस्म के एक हिस्से में भी तकलीफ पहुंचे ना, आपके दांत में दर्द हो तो आप सारी रात सो नहीं सकते, आपके सर में दर्द हो तो आप कोई काम नहीं कर सकते। एक मुसलमान को भी तकलीफ हो कहीं भी दुनिया में, तो मुसलमान को तकलीफ होनी चाहिए, मुसलमान को वैसे फील होना चाहिए। दूसरे मुसलमान का माल अपने ऊपर हलाल ना करे, यानी माल नाहक ना खाओ कि किसी तरह लूट खसूट के मैं दूसरे का माल खा लूं। दूसरे की इज्जत की हिफाजत करो, दूसरे की इज्जत को ऐसे ही समझो जैसे अपनी इज्जत। आप एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान को ऐसे मौके पर जलील करेगा जहां इसकी हद तक हो, यानी बेइज्जती हो रही हो, या इसकी इज्जत में कुछ कमी आए, तो अल्लाह ताला भी उसको ऐसी जगह पर जलील करेगा जहां वो अल्लाह की मदद का तलबगार होगा, वो चाहता होगा अल्लाह ताला मेरी मदद करे, अल्लाह ताला भी उसको वहां रुसवा करेगा। और जो शख्स किसी ऐसी जगह पर किसी मुसलमान की मदद करेगा जहां इसकी बेइज्जती और हद तक होती हो, ऐसी जगह पे मुसलमान की मदद करेगा यानी उसके हक में बोलेगा, तो अल्लाह ताला ऐसे मकाम पर उसकी मदद करेगा जहां इसको भी अल्लाह की मदद की जरूरत होगी। तो मुसलमान को तो जायज ही नहीं कि वो 3 दिन से ज्यादा किसी दूसरे मुसलमान से कता ताल्लुक करे, और 3 दिन गुजर जाए ना तो एक को चाहिए कि वो दूसरे से मिले, उससे सलाम करे। अगर तो दूसरे ने सलाम का जवाब दिया तो दोनों अजर व सवाब में शरीक हो गए, या इन्होंने आपस में ताल्लुक दोबारा बहाल कर लिया, और अगर सलाम का जवाब नहीं दिया तो सलाम करने वाला बरी व जिम्मा हो गया, इस पे कता ताल्लुक का गुनाह नहीं होगा, दूसरे पे होगा। तो मुसलमान के, तो मुसलमान पे बहुत हकूक है। आज हम क्या चीज देख के दूसरे के साथ सलूक करते हैं, या हमें कब तकलीफ होती है? किसी मुसलमान के काम पे नहीं, जब हमारी जुबान वाला, हमारे इलाके वाला, या हमारी जात बरादरी वाला वो कोई हो तो तब तकलीफ होती है, हमारी कौमियत वाला। उसके अलावा कोई और मुसलमान हो तो अच्छा, वो तो वहां के मुसलमान है ना, उसको हम अपनी इज्जत उस तरह नहीं समझते। उनकी भी जान या माल और इज्जत को ऐसे ही हिफाजत करनी, ऐसे ही उनको हराम समझना अपने लिए, यानी उनकी इज्जत के ऊपर हर्फ लाना, उनकी बात करना, उनकी बुराई करना, ऐसे ही अपने ऊपर हराम समझना है जैसे कि आप काबे की बेहुर्मती करना हराम समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान के मुसलमान पे 6 हकूक हैं। वो क्या है 6 हकूक? कि जब इससे मिले तो सलाम करे उसको, जब वो दावत करे तो कबूल करे, यानी वो किसी दावत पे बुलाए तो उसको कबूल करे अनलेस के कोई शरई उजर हो, जब तुझसे खैर ख्वाही चाहे तो उसकी खैर ख्वाही कर, छींक ले और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो यरहमुकल्लाह कहो, जब बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करे, और जब मर जाए तो उसके जनाजे के साथ जाए। ये है मुसलमान के 6 हकूक मुसलमान पे, ये तो लाजमी हकूक ही हैं। तो किसी मुसलमान को जायज नहीं है कि अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे, उसके माल का नुकसान करे, या उसकी इज्जत पे हमला करे, उसका ऐब खोले किसी लोगों के सामने, उसकी गीबत करे, उससे बहस मुबाहसा करे, उसका मजाक उड़ाए। हम किस चीज़ में दिल लगी या मजाक समझते हैं कि जब हम किसी की बेइज्जती करें, बेइज्जत करने में किसी को बेइज्जत करके फिर हम हंसते हैं, फिर ये हमारे मजाक का भी मयार ये हो गया। तो मुसलमान की इज्जत तो दूसरे मुसलमान पे हराम है, कैसे हम ये कर सकते हैं? और ये ऐसे हराम है, कोई कम नहीं बात, ये ऐसे हराम है जैसे अरफा का दिन, जैसे जिलहज का महीना, जैसे शहरे मक्का, जैसे काबा है ना, इस तरह हराम है। फिर आपने फरमाया सुन लो, जाहिलियत की सारी चीजें, यानी जो इस्लाम से पहले के दौरे जाहिलियत के जमाने की सारी बातें हैं ना, ये सब मेरे दोनों कदमों के नीचे दफन और पामाल हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को कैंसल कर दिया, जितनी जमाने जाहिलियत की चीजें थी अब ज़माना जाहिलियत की क्या चीज़ें थी, जंगें करते थे तो फिर ख़त्म ही नहीं करते थे, जंग चलती रहती थी, छोटी छोटी बातों पे जंगें करते थे। फिर क्या ज़माने जाहिलियत की चीज़ थी, शराब, शराब पीना आम था उनके यहाँ। और हमें भी बता दिया गया कि देखो लानत है उस आदमी के ऊपर जो शराब पिए, पिलाए, उसको नचोड़े, उसको बेचे, उसको खरीदे, उसको उठा के लेके जाए, और जिसके लिए उठा के ले जाई जाए, जिसके जो निचोड़ने वाला है इसका, इस मतलब सारे इनके ऊपर जो है लानत भेज दी गई। यहाँ तक कि एक हदीस में आता है कि चार आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि इनको जन्नत में नहीं भेजेगा और ना जन्नत की नेमतों से इनको कोई हिस्सा मिलेगा। वो कौन कौन है? शराब का आदी, सूद खाने वाला, यतीम का माल खाने वाला, और माँ बाप का नाफरमान। तभी इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि शराब कैसी बुरी चीज़ है, और ये इन लोगों में बहुत आम थी। और आपने एक जगह और भी फरमाया था बुखारी की हदीस में, कि आपने फरमाया था मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी पैदा हो जाएंगे जो शराब और गाने बजाने को हलाल समझने लगेंगे। फिर और क्या चीज़ ज़माने जाहिलियत में थी? कौमियत, कौमियत परस्ती इस कदर ज़्यादा थी ना कि हमारा कबीला, हमारी कौम, ये जो बात कहेगी बस वो सही है। हमारी कौम वाला चाहे कातिल है, जानी है, शराबी है, कितना भी गुनाहगार है, हम उसके साथ खड़े हुए, चाहे वो कितना भी बड़ा जालिम है, क्योंकि वो हमारे कबीले का है, लिहाजा हम उसी का साथ देंगे। यहाँ तक कि कई लोग तो ये कहते थे कि अगर हमारा कबीला हिदायत पा गया, वो इस्लाम ले आया, तो हम भी ले आएंगे, अगर वो नहीं लेकर आया तो हम भी नहीं लेकर आएंगे। यानी इतनी ब्लाइंड फॉलोइंग थी कबीले की। आज बरादरी सिस्टम, आज जबानों के ऊपर अपने आप को एसोसिएट करना, कि हमारी जुबान वाला, हमारे इलाके वाला, अगर वो नाहक बात भी करेगा तो तब भी हम उसके साथ हैं, अगर वो जालिम भी है तब भी मैं उसके साथ खड़ी हूँ। क्यों? इसलिए कि वो हमारी बरादरी का, हमारे इलाके का। आप देखें ये जो मैं आपको ज़माना जाहिलियत की कुछ चंद एक मिसालें बताऊंगी ना, ये सब हमारे अंदर वापस आ चुकी हैं। आपने तो इनको दफन कर दिया कि मेरे पैरों के नीचे हैं ये, और हम उनको वापस ले आए। बेटियों को दफन कर देते थे, जिंदा दरगोर कर देते थे, आज पेट में दरगोर कर देते हैं। वो तो पैदा होके करते थे ना, आज पेटों में ही मार देते हैं कि बेटी है। फिर औरत से कैसा बर्ताव किया जाता था कि उसको भी मिल्कियत समझा जाता था। आज वो ही जमाने जाहिलियत आ गए हैं। फिर विरासत में उसको हिस्सा नहीं दिया जाता था। आज देखें किस घर में है कि वाकई ही जिस तरह से अल्लाह ताला का हुक्म है उस तरह से विरासत में हिस्सा दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि जो हिस्से अल्लाह ताला ने मीरास के मुकर्रर कर दिए हैं, माँ के, बाप के, बेटी के, बेटे के, खबरदार उन फराइज में कोई तब्दीली ना करे। अगर वसीयत करना चाहते हो तो एक तहाई की सिर्फ, 1/3 की सिर्फ कर सकते हो, वो भी वारिस के हक में नहीं कर सकते। आप देखें कि आज अपने मीरास के हमने कवानीन बना लिए, अपने विरासत के कवानीन बना लिए, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है कि कुरान हमें बताए कि किसको कितना मिलना चाहिए। हम ज़्यादा इंसाफ करने वाले हैं अल्लाह ताला से भी। फिर उसके बाद काहिनों के पास, नजूमियों के पास, इनके पास जाना उनका तरीका था कि हर चीज़ जो काम करने लगते थे ना, पहले उनसे जाके पूछते थे, नजूमियों वगैरह से जाके पूछते थे कि ये काम करें नहीं करें, किस में बेहतरी है। आज शादियां करने लगते हैं, कारोबार शुरू करने लगते हैं, सफ़र करने लगते हैं, नजूमियों के पास जाते हैं। अखबार देख लें आप, अपने टीवी देख लें आप, और भी दुकानें देख लें आप, हर जगह एक पूरे पूरे सफ़े के वो होते हैं कि अपने मसाइल लिख के भेजते हैं कि अब इनका बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ कि अब क्या इसका हिसाब लगाया जाए। ये सब तो जाहिलियत की चीज़ें थी। फिर क्या था उस ज़माने में? औरतें बेपर्द फिरा करती थी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी उसको फरमाया कि ये ज़माना जाहिलियत की जो है ना, बनना, ठहरना और फिर बेपर्द होके बाहर निकलना, ये छोड़ दो। तो ये ज़माना जाहिलियत की चीज़ थी, आज इसको मॉडर्निज्म कहा जाता है। और जाहिलियत किसको समझा जाता है? पर्देदारी को जाहिलियत समझा जाता है। तो ये तो सब जाहिलियत की बातें थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इनको कैंसिल कर दिया। आज जाहिलियत वापस आ गई है, इस 21वीं सदी में वापस वो ही उसी दौर में चले गए जो प्री इस्लामिक दौर था। और आपने फरमाया, और ज़माना जाहिलियत के किसी खून का बदला नहीं लिया जाएगा, और सबसे पहले मैं अपने घराने के एक खून, रबिया बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के खून के ख़त्म और माफ़ किए जाने का ऐलान करता हूँ। ये इनको कत्ल कर दिया गया था, छोटे ही थे अभी, कबीला बनू साद के घर में दूध पीने के लिए रहते थे, इनको कबीला हजील के आदमियों ने कत्ल कर दिया था। और अभी बदला नहीं लिया हुआ था खून का, लेकिन आपने सबसे पहले अपने ख़ानदान से शुरू किया कि मैं ऐलान करता हूँ कि अब ये किस्सा ख़त्म है, अब कोई बदला नहीं लिया जाएगा। तो आपने खून का बदला, उस ज़माने में ये था, एक किसी ने किसी का कत्ल किया तो उसने उसके चार कत्ल करता था। इसने जुर्रत कैसे की? जिसने कत्ल किया उसकी बजाय जाके कातिल की बजाय किसी और को पकड़ के कत्ल कर दिया। फिर आपने फरमाया, ज़माना जाहिलियत के तमाम सूदी मुतालिबात जो किसी के ज़िम्मे बाकी हैं वो सब भी ख़त्म, मनसूख। अब कोई मुसलमान किसी से अपना सूदी मुतालबा वसूल नहीं करेगा। सूद को आपने फरमाया कि तमाम किस्म के जो रिबा हैं वो हराम है। और इस सिलसिले में सबसे पहले आपने फरमाया कि मैं अपने ख़ानदान के सूदी मुतालबात में से अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सूदी मुतालबात के ख़त्म और कैंसल होने का ऐलान करता हूँ, मनसूख करता हूँ। क्योंकि हज़रत अब्बास जो थे वो लोगों को कर्ज़ देते थे और सूद पे वापस लेते थे ना, तो आपने सबसे पहले अपने घर से ख़त्म किया। और क्योंकि सूद के अहकाम एंड में तकरीबन आए थे, इसलिए इस वक्त तक भी आपने फरमाया कि जो किसी के ऊपर सूद के साथ कर्ज लौटाना बाकी है तो मैं उसको ख़त्म करता हूँ। और आपको मालूम है सूद के साथ भी कई लानतें हैं, कि यानी सूद जो लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, उसकी गवाही देने वाला, इन सब के ऊपर लानत की गई है। नहीं, ये भी ऐसा बड़ा गुनाह है। और हमने कुरान पाक में पढ़ा है कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाए। अब देखें, जाते जाते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद की थी। शायद आप समझते होंगे कि इसके बाद उम्मत कहीं दोबारा इन चीज़ों में ना पड़ जाए। और आपने इरशाद फरमाया कि एक और हदीस में आता है, इब्ने माजा की भी है और मिशकात में भी है ये हदीस, कि आपने फरमाया कि सूद के गुनाह के 70 हिस्से हैं, 70। एक मामूली सा हिस्सा ये है इसका गुनाह, यानी मामूली सा हिस्सा इसके गुनाह का ये है जैसे कोई शख्स अपनी माँ से जिना करे। देखिए, इस चीज़ का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और सूद के जो 70 हिस्से हैं ना गुनाह के, उनमें से सबसे छोटा हिस्सा इतना है। और आज सूद को हलाल समझा जाता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि सिवाय सूद खाने वालों के कोई बाकी ही नहीं रहेगा, और जो सूद नहीं भी खाएगा उसको भी इस सूद का गुबार तो पहुंचेगा, डस्ट तो पहुंचेगी। तो सूद खाने वाले, खिलाने वाले, लिखने वाले, गवाही देने वाले, ये इनको आपने फरमाया कि सारे ही बराबर हैं, ये सब गुनाह में बराबर हैं, शरीक है। तो ये भी एक ऐसा गुनाह है जिसके ऊपर इतनी बड़ी वईद कुरान पाक सुनाता है। कौन है जो इतनी ताकत रखता हो कि वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाए, और स्पेशली जब बात समझ में आ जाए उसके बाद भी सूद खाते रहना, बैंकों में अकाउंट खुलवा के और उसके बाद सूद की आमदनी के ऊपर घरों को चलाना, कैसे खैर व बरकत आ सकती है? जैसे शराब के साथ नहीं आ सकती कि हदीस में आता है जिसने शराब से इलाज किया अल्लाह ताला उसे शफा ना दे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। इसी तरह सूद से भी, जिसने शराब पी इलाज के लिए भी, यानी उसको भी अल्लाह ताला ने शिफा दे, ये आपने दुआ की, तो और किस चीज़ से खैर आ सकती है इस शराब के पीने या पिलाने से? कैसे खैर आ सकती जब बीमार तक को इजाज़त नहीं है कि वो उसे अपना इलाज करे? इसी तरह सूद के खाने खिलाने लिखने शहादत देने गवाही देने, इससे कैसे खैर निकल सकती है? फिर आपने फरमाया, ए लोगो, औरतों के हकूक का ख्याल करना, उनसे कुछ गलती हो जाए तो उनको माफ कर देना, यानी कमजोरों के हकूक याद दिलाए। सुभान अल्लाह, अभी औरतें कहती हैं कि हमें तो कोई हकूक ही नहीं मिले। आपने फरमाया, उनके साथ बर्ताव के बारे में खुदा से डरो, इसलिए कि तुम इनको अल्लाह की अमानत के तौर पर लेते हो। तुम्हारे हाथ में ये ऐसे होती हैं जैसे कैदी, और अल्लाह के हुक्म और उसके कानून के जरिए से तुम इनको हलाल करते हो अपने लिए, और जैसे तुम्हारे हकूक हैं इन पर, इसी तरह उनके हकूक भी हैं तुम पर। कौन वकालत कर रहा है आपकी तरफ से? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हक में बोल रहे हैं उस वक्त जाते जाते भी, कि जो खामिन है वो बीवियों के ऊपर जुल्म ना करें। ये तो औरत तो पसली से बनी है, कमजोर है, और पसली ऊपर की जो होती है वो टेढ़ी होती है थोड़ी सी, तो ये जैसे अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया इसको ऐसे ही रहने दो। इसको अगर तोड़ने की, इसको चेंज करने की कोशिश करोगे ये टूट जाएगी। अल्लाह ताला ने जैसे इसको बनाया है वैसे ही छोड़ दो। तो आपने फरमाया कि जैसे तुम्हारे हकूक है ना इन पर, इसी तरह उनके भी हकूक हैं तुम पर, और तुम्हारा हक इन पर यह है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी इजाजत के बगैर किसी को दाखिल ना करें। किसी ऐसे इंसान को जिसको शौहर पसंद नहीं करता उसको घर में औरत ना आने दे। जब हुक्म दो तो इताअत करे, तुम्हारे माल इज्जत की हिफाजत करे, और अपनी इज्जत पर कभी दाग ना लगने दे। और तुम्हारा खास हक इन पर यह है कि तुम्हारी जगह और तुम्हारे बिस्तर पर बैठना जिसका तुम्हें पसंद ना हो वो इसको इसका मौका ना दे, यानी ऐसे इंसान को किसी को भी घर में दाखिल ना करे जिसका हस्बैंड पसंद नहीं करता घर में आना। लेकिन अगर वो गलती करें तो उनको खफीफ सी सजा दे सकते हो, जैसे हमने पढ़ा भी था सूरह निसा में, या किस तरह की गलती के ऊपर और किस चीज़ से शुरू करना है, वाज करना है, फिर बिस्तर अलग करने हैं, फिर हल्की मार, वो भी जब वो खुली खुली सरकशी करें। और इनका खास हक तुम पर ये है, यानी औरतों का अब, कि नान नफका इज्जत जान माल की हिफाजत और हकूक अदा करना, और अपने हैसियत के मुताबिक इनके खाने पहनने का बंदोबस्त करना। फिर आपने विरासत का हक भी याद दिलाया, कि विरासत का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अल्लाह ताला ने जो हिस्से मुकर्रर कर दिए वैसे ही रखना, उनमें चेंज नहीं करनी। और आपने आखिर में एक और बात बहुत अहम बताई, वो क्या थी? कि मैं तुम्हारे लिए वो सामान हिदायत छोड़ रहा हूं कि अगर तुम इससे मजबूती से पकड़े रहे, इससे जुड़े रहे, इसकी पैरवी करते रहे, तो फिर कभी तुम गुमराह ना होगे, और वो है अल्लाह की किताब। वो क्या है? अल्लाह ताला की किताब के साथ जुड़े रहना। और फिर फरमाया, लोगो याद रखो, मेरे बाद कोई नबी नहीं है और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं है, लिहाजा अपने रब की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमजान के रोजे रखना,
خوشی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ دیکھیں کیا کیا احکامات دیے، اور فرمایا اور قیامت کے دن اللہ کی طرف سے تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ میں نے اللہ کے احکامات تم تک پہنچا دیے یا نہیں، تو بتاؤ وہاں تم کیا کہو گے، کیا جواب دو گے؟ تو جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اس کے احکام ہم تک پہنچا دیے یا نہیں، آپ تک پہنچے ہیں نا، سب پہنچ گئے نا۔ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، اور آپ نے رہنمائی کا اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور نصیحت اور خیرخواہی میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس پر آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کے مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اور آپ جب یہ بولتے جا رہے تھے تو ساتھ ساتھ ربیہ جو تھے وہ اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے، آگے سے آگے، مائک تو ہوتا نہیں تھا نا۔ تو آپ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی تھی جو آپ نے سورہ مائدہ میں ابھی پڑھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا، اب اس دین میں اور کوئی نئی بات نہیں آئے گی، بس یہ دین مکمل ہو گیا اب ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ حضرت عمر جو تھے یہ آیت سن کے رونے لگے تھے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو فرمایا اس لیے کہ اب کمال کے بعد زوال ہی تو ہے، اب جب دین مکمل ہو گیا تو اب اس کے بعد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ تو آپ نے یہ خطبہ دیا اور 10 ذی الحج کو بھی آپ نے خطبہ فرمایا، جو قربانی کا دن ہے نا، اس دن بھی آپ نے خطبہ فرمایا تھا، اور انہی میں سے کچھ باتوں کی تاکید بھی کی تھی، اور ایک اور بات فرمائی تھی جب آپ نے فرمایا، اچھا تو سنو کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے، اور تم لوگ بہت جلدی اپنے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا۔ دیکھیں آپ کو ریمائنڈر دے رہے ہیں، بہت جلدی ملنے والے ہو تم، وہ پھر تم سے پوچھے گا تمہارے اعمال کے بارے میں، لہٰذا دیکھو میرے بعد پلٹ کے گمراہ نہ ہو جانا، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے نہ لگ جانا، یعنی قتل و غارت نہ شروع کر دینا۔ آج ایسی قتل و غارت ہے کہ نہ خون بہانے والے کو پتا ہے کہ میں کیوں خون بہا رہا ہوں، نہ جو قتل ہو رہا ہے، مقتول ہے، اس کو پتا ہے کہ میں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں، اور قیامت کے نزدیک تو بہت بہت خون خراب ہوگا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بہت خون خراب ہوگا، بہت قتل و غارت ہوگا۔ آج ایک ایک دفعہ میں ایک ایک آدمی کئی ہزاروں لوگوں کا خون کر دیتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، کیوں میں کسی کی جان لے رہا ہوں۔ تو یہی نصیحت تو آپ کر کے گئے تھے کہ دیکھو میرے پیچھے سے پلٹ نہ جانا دین سے، بتاؤ میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ گواہ رہنا، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ لوگ جن تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والوں سے بھی کہیں زیادہ ان باتوں کو سمجھ کے عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنانا کہ وہ لوگ جن تک بات پہنچا جاتی ہے وہ کبھی کبھی سننے والوں سے بھی زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے اور بھی کئی نصیحتیں فرمائی، مگر آج کے لیے چونکہ اتنا ہی وقت ہمارے پاس ہوتا ہے تو یہیں تک اس کو مکمل کریں گے، مگر ایٹ لیسٹ آپ کے سامنے جو مین پوائنٹس ہیں वो तो आ चुके होंगे ना। ये क्या क्या चीज़ें हैं, एक लिस्ट आप बना सकते हैं जिनकी नसीहत जाते जाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने में हमें की थी और हज के मौके पर की थी, और ये फरमा दिया था कि आगे पहुंचा देना इनको। हम तक ये बातें पहुंच गई हैं ना, ये कितनी ज़रूरी बातें होंगी। एक ऑल दो कुरान में आ चुकी थी, बहुत सारी अहदीस भी हैं इस बारे में, मगर फिर भी जाते जाते भी आपने नसीहत की, देखो इनसे ना फिर जाना, देखो इन बातों को याद रखना, देखो मेरे पीछे से पलट ना जाना, देखो अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रखना, पकड़े रखना उसको, छोड़ना ना, छोड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। वातासिमु बिहब्लिल्लाह जमीअ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, और अल्लाह की रस्सी क्या है, ये किताब ही है, ये कुरान है अल्लाह की रस्सी। ये अल्लाह की रस्सी ऐसी है, समझ लें कि एक सिरा आपके पास है और एक अल्लाह ताला के पास आसमानों में गया है, समझ लें कि एक रस्सी आसमानों में जा रही है जिसका दूसरा सिरा अल्लाह ताला के पास है, और एक हिस्सा आपने पकड़ लिया और आप इसे लटके में हैं, और आपके नीचे क्या है, आग का समंदर है, जहन्नम है। अगर आपने किसी वक्त इस रस्सी को छोड़ दिया तो किधर गिर जाएंगे, नीचे जहन्नुम आग, उसमें गिर जाएंगे। क्या आप कभी फिर इस रस्सी को छोड़ेंगे, क्या कभी गिरफ्त ढीली होगी, कभी भी नहीं। जब आपको नजर आ रहा होगा कि इसको छोड़ा तो मैं गई, फिर मेरा ठिकाना सिर्फ आग ही आग है, नीचे तो आग का समंदर है। आप कहेंगे कि कुछ छोड़ दूंगी, ये रस्सी नहीं छोड़ूंगी, आज इस रस्सी को छोड़ के बेपरवाह हैं, और फिर भी सोचते हैं कि हम हिदायत याफ्ता हैं, सीधे रास्ते पर हैं, चाहे एक बात भी नहीं समझ में आई हुई, चाहे एक हुक्म भी नहीं माना हुआ, चाहे कभी कुरान पढ़ा भी ना हो, फिर भी खुद को हिदायत याफ्ता समझते हैं। कैसे हिदायत पा सकते हो, तुम तो गुमराह हो जाओगे इसको छोड़ दिया तो, ये कह के गए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हिदायत याफ्ता हो सकते हो, इस किताब से आप अलग हुए नहीं, और शैतान उचकने के लिए बैठा हुआ है जहन्नुम में, जिसके अंदर आग का समंदर है। इस रस्सी को छोड़ेंगे, याद रखें ये बात, अपने पल्ले से बांध ले, ये रस्सी मेरे हाथ से अगर चली गई तो मैं कहाँ गिर जाऊंगी, फिर कोई कितना भी फिर लालच दे, कोई कुछ भी फिर कहे, डराए धमकाए कुछ भी कह दे, क्या आप कभी इस रस्सी को छोड़ पाएंगे फिर। इस मिसाल को जहन में रखिएगा, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं मिसाल दे रही, ये कुरान पाक में है, ये इसी आयत से आगे आप देख लें, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम आग के जहन्नुम के किनारे पे थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें बचा लिया इस रस्सी को पकड़ने की वजह से। तो इस रस्सी को मजबूती से थामे रखना है, जुड़ना है इस कलाम के साथ, तभी अल्लाह से जुड़ पाएंगे। इसको वो कनेक्शन समझिएगा, जैसे आपके फ़ोन का कनेक्शन होता है ना, उसमें तार होती है, एक तरफ से आपने पकड़ा हुआ और दूसरी तरफ कहीं और कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उस तार को ही काट देंगे तो कैसे राबता रहेगा। इसी तरह ये कुरान है, अल्लाह ताला से अगर कनेक्शन रखना चाहते हैं तो इसको हाथ से नहीं जाने देना, इसको छोड़ना नहीं है कभी, जितनी ज़िंदगी है इसके साथ जुड़े रहना। अल्लाह ताला इन तमाम अहकामात पे अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों से जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते जाते हमें नसीहत की थी, या अल्लाह हमें भी इन सब चीज़ों से जिनसे उन्होंने मना किया उनसे हमें बचने की तौफीक अता फरमाना, और जिन पर अमल करने की उन्होंने नसीहत की अल्लाह ताला उन पर अमल करना हमारे लिए आसान बना देना। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته